एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसे नाम पर बात करने वाले हैं जो सुनते ही जहन में जीनियस कौंध जाता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
हाँ, आइंस्टाइन।
और हमारे पास है वॉल्टर आइजकसन की लिखी उनकी जबरदस्त जीवनी आइंस्टाइन, His Life and Universe। तो आज हम इसी के सहारे उनके कमाल के जीवन और उनकी सोच को समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, और देखिए, ये किताब सिर्फ उनके मुश्किल वैज्ञानिक फॉर्मूलों के बारे में नहीं है जैसा आपने कहा।
हाँ,
ये ज्यादा इस बात पर है कि कैसे आइंस्टाइन की थोड़ी विद्रोही सोच थी, उनकी कल्पना शक्ति कमाल की थी, और वो जो स्थापित सत्ता होती ना, उसे बस यूं ही मान लेने वालों में से नहीं थे।
अच्छा।
और इसी चीज ने उन्हें हिम्मत दी कि वो फिजिक्स के जमे जमाए नियमों को चुनौती दें और देखें कि ब्रह्मांड असल में कैसा है।
तो आइजकसन इसी बड़े सवाल को उठाते हैं
जी,
कि भाई वो क्या था जिसने आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाया? सिर्फ तेज दिमाग?
नहीं, सिर्फ वो नहीं, किताब यही बताती है, ये वो सोच थी जिसने कहा, नहीं, मैं मानूंगा नहीं कि दुनिया बस ऐसी ही है जैसी दिखती है या बताई जाती है। मतलब गहरा सवाल पूछने की हिम्मत।
और आज उनकी कहानी क्यों जरूरी है?
इसलिए कि ये सिर्फ विज्ञान की नहीं है, ये क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता की कहानी है, जिज्ञासा की कहानी है, सच के लिए खड़े होने का जो नैतिक साहस चाहिए उसकी कहानी है।
हाँ।
और ज्ञान के साथ जो जिम्मेदारी आती है उसकी भी। ये सारी बातें आज भी उतनी ही, शायद पहले से ज्यादा प्रासंगिक हैं।
तो चलिए सफर शुरू करते हैं। जर्मनी का उल्म शहर, वहां जन्म हुआ, बचपन म्यूनिख में।
हाँ,
कहते हैं बचपन से ही बड़े जिज्ञासु थे, सवाल बहुत पूछते थे।
हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है कि वो बोलने में थोड़े धीमे थे शुरू में, पर सोचते बहुत तेज थे।
अच्छा।
और सोचते भी तस्वीरों में थे, विजुअल थिंकर जिसे कहते हैं। बचपन में ही ये सोचना कि अगर वो लाइट की किरण पर बैठकर जाएं तो कैसा लगेगा।
हाँ हाँ, सुना है इसके बारे में।
ये उनके बाद के जो मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट्स हैं, विचारात्मक प्रयोग, उसकी शायद पहली झलक थी।
और वो जर्मनी का उस वक्त का जो पढ़ाई का सिस्टम था, वो रटने वाला, सख्त।
हाँ, वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया।
वहीं से शायद उनके मन में वो शक का बीज पड़ा होगा स्थापित चीजों के प्रति।
बिल्कुल, जो जिंदगी भर रहा उनके साथ। फिर ज़ुरिक पॉलिटेक्निक गए, वहां माहौल थोड़ा बेहतर था, खुला था।
और वहीं उनकी मुलाकात मिलेवा मारिच से हुई।
हाँ, मिलेवा मारिच, वो भी फिजिक्स की बहुत होनहार स्टूडेंट थी और आइंस्टीन की शुरुआती बौद्धिक साथी भी बनी। उनके रिश्ते और मिलेवा के योगदान पर आइजकसन ने बात की है, हालांकि ये इतिहासकारों में थोड़ी बहस का विषय भी रहा है।
अच्छा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद नौकरी मिलने में काफी मुश्किलें आई उन्हें।
हाँ, बहुत संघर्ष करना पड़ा, कोई अच्छी अकेडमिक पोजिशन नहीं मिल रही थी। आखिरकार बर्न में स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी मिली।
क्लर्क की नौकरी?
सुनने में तो लगता है कि ये तो कोई,
हाँ,
लेकिन वो एक तरह से छिपा हुआ वरदान था उनके लिए।
कैसे?
देखिए, पेटेंट ऑफिस का काम दिमाग को तेज रखता था, नए नए आइडियाज, उनके पीछे का विज्ञान समझना पड़ता था, लेकिन काम इतना भी ज्यादा नहीं था कि वो फिजिक्स के बड़े सवालों पर सोच ना सकें। उन्हें सोचने का वक्त मिल गया।
अच्छा।
और वहीं उसी पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए 1905 में आया वो चमत्कारिक साल, एनस मिराबिलिस।
हाँ, 1905, सिर्फ 26 साल की उम्र, और वो भी एक पेटेंट क्लर्क, और एक ही साल में चार पेपर्स,
चार क्रांतिकारी पेपर्स जिसने फिजिक्स की दुनिया हिला दी।
कौन कौन से थे वो? पहला तो शायद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला था।
हाँ, पहला फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव, जिसने ये बताया कि रोशनी सिर्फ लहर की तरह नहीं बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट मतलब फोटॉन्स की तरह भी बर्ताव करती है। इसी के लिए नोबेल मिला बाद में।
अच्छा।
दूसरा था ब्राउनियन मोशन पर, जिसने पक्का सबूत दिया कि हाँ, एटम और मॉलिक्यूल सच में होते हैं, वो सिर्फ एक थ्योरी नहीं है।
और तीसरा?
वो स्पेशल रिलेटिविटी।
हाँ, विशेष सापेक्षता, जिसने समय और स्पेस मतलब टाइम और स्पेस के बारे में हमारी सदियों पुरानी सोच ही बदल दी कि ये निरपेक्ष नहीं है, ये देखने वाले की गति पर निर्भर करते हैं।
कमाल है। और चौथा पेपर, वो तो सबसे मशहूर है शायद, E=mc².
बिल्कुल, E=mc², जिसने बताया कि मास यानी द्रव्यमान और एनर्जी यानी ऊर्जा, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है।
सोचकर भी हैरत होती है।
हाँ, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सब किसी बड़ी फैंसी लैब से नहीं आया।
हाँ, ये बात ध्यान देने वाली है, ये आया उन बुनियादी मान्यताओं पर सवाल उठाने से जिन्हें वैज्ञानिक सदियों से सच मानकर बैठे थे। ये आइंस्टीन की कल्पना, उनकी विद्रोही सोच का नतीजा था।
1905 के बाद तो फिर आइंस्टीन को पहचान मिलनी शुरू हुई।
हाँ, फिर वो गुमनामी से निकले, ज्यूरिख, प्राग और फिर बर्लिन में प्रोफेसर बने। बर्लिन उस समय विज्ञान का मक्का माना जाता था।
और बर्लिन में ही उन्होंने अपने सबसे बड़े काम जनरल रिलेटिविटी पर काम किया।
हाँ, सामान्य सापेक्षता। और ये आसान नहीं था, पूरे 10 साल लगे।
10 साल?
जबरदस्त दिमागी कसरत थी। ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह नहीं बल्कि स्पेस और टाइम के ताने बाने में, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, उसमें भारी चीजों से पड़ने वाले खिंचाव या झुकाव के तौर पर समझना।
वो चादर वाला उदाहरण आपने दिया था।
हाँ, जैसे चादर पर भारी गेंद रख दें तो गड्ढा बन जाता है और छोटी चीजें उस गड्ढे के चारों ओर घूमती हैं, वही ग्रेविटी है। इसके लिए बहुत मुश्किल गणित चाहिए था। उनके दोस्त थे गणितज्ञ मार्सेल ग्रॉसमैन, उन्होंने बहुत मदद की।
और फिर 1919 में वो सूर्य ग्रहण वाली घटना हुई।
हाँ, वो निर्णायक पल था जब वैज्ञानिकों ने देखा कि दूर के तारों से आती रोशनी सूरज के पास से गुजरते हुए वाकई मुड़ रही है, ठीक वैसे ही जैसे आइंस्टाइन के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी।
उसके बाद तो वो रातों रात दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बन गए होंगे।
बिल्कुल, पहले ग्लोबल साइंटिफिक सुपरस्टार थे वो, और उन्होंने शौहरत का इस्तेमाल भी किया, शांति के लिए आवाज उठाई, ज़ायोनीवाद का समर्थन किया।
लेकिन फिर जर्मनी में हालात बिगड़ने लगे।
हाँ, नाजी पार्टी सत्ता में आई, यहूदियों के खिलाफ माहौल बना और 1933 में आइंस्टाइन को जर्मनी छोड़ना पड़ा। वो अमेरिका चले गए।
अमेरिका में प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में।
हाँ, वहाँ वो जिंदगी भर रहे। वहीं क्वांटम मैकेनिक्स को लेकर उनकी नील्स बोर जैसे वैज्ञानिकों से बड़ी मशहूर बहसें हुईं। आइंस्टाइन को क्वांटम थ्योरी की वो अनिश्चितता वाली बात, वो प्रोबेबिलिटी वाली बात पसंद नहीं आई।
उनका वो कहना था, ईश्वर पासे नहीं फेंकता।
बिल्कुल। अपने आखिरी सालों में वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी की तलाश में लगे रहे, एक ऐसा सिद्धांत जो कुदरत की सारी ताकतों को एक ही नियम से समझा सके।
उसमें तो शायद उन्हें कामयाबी नहीं मिली।
नहीं, वो सपना अधूरा रह गया। लेकिन वो सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे, नागरिक अधिकार, परमाणु हथियार खत्म हो, एक विश्व सरकार बने, इन सब के हिमायती रहे। तो उनकी विरासत सिर्फ विज्ञान नहीं है, एक नैतिक आवाज भी है।
ये तो उनके जीवन का एक खाका था। अब जरा उनकी सोच, उनके मूल्यों की बात करते हैं। आइज़ैक्सन कुछ खास बातों पे जोर देते हैं,
है ना?
हाँ,
कुछ बहुत जरूरी चीजें हैं जो आइंस्टाइन को आइंस्टाइन बनाती हैं। पहली और शायद सबसे अहम वो थी उनकी गैर अनुरूपता, मतलब लीक से हटकर चलना, विद्रोह का भाव।
हाँ, ये बार बार आता है।
चाहे स्कूल हो, वैज्ञानिक सिद्धांत हो या सरकारें, वो सवाल उठाते थे। ये उनकी फितरत थी, यही उनकी क्रिएटिविटी का सोर्स था।
और दूसरी चीज उनकी कल्पना शक्ति, वो विजुअलाइजेशन। तीसरा, वो हमेशा चीजों को सरल और सामंजस्यपूर्ण रूप में देखना चाहते थे, सिंप्लिसिटी एंड हार्मनी।
बिल्कुल, उन्हें यकीन था कि ब्रह्मांड के जो मूल नियम हैं वो पेचीदा नहीं, सरल और सुंदर होने चाहिए। इसे वो कुदरत की श्रेष्ठ तर्क शक्ति का सबूत मानते थे।
ये भी दिलचस्प है कि उनका निजी जीवन और काम कैसे जुड़े थे, रिश्ते, अकेलेपन की जरूरत, वायलिन बजाना।
हाँ, ये सब उनकी सोच को प्रभावित करता था। यहां तक कि पेटेंट ऑफिस का जो अनुभव था उससे भी उन्हें जटिल सिस्टम्स को समझने में मदद मिली।
और एक वैज्ञानिक की सामाजिक जिम्मेदारी वाली बात।
हाँ, वो भी बहुत अहम है। विश्व युद्ध, नाजीवाद, परमाणु बम, इन सब ने उन्हें एहसास दिलाया कि वैज्ञानिकों की एक नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी बनती है, उन्हें अपनी खोजों के असर के बारे में सोचना चाहिए।
लेकिन आइज़ैक्सन उन्हें कोई संत नहीं बनाते, उनकी इंसानी कमजोरियों को भी दिखाते हैं।
हाँ बिल्कुल, जिसे ह्यूमैनिटी ऑफ जीनियस कहते हैं। परिवार को शायद उतना वक्त नहीं दे पाए, कभी कभी बहुत जिद्दी हो जाते थे। ये दिखाता है कि महान लोग भी इंसान होते हैं अपनी कमियों के साथ।
और वो जिद वाली बात कि जिस जिद ने रिलेटिविटी तक पहुंचाया उसी ने बाद में क्वांटम मैकेनिक्स से थोड़ा दूर कर दिया।
हाँ, वो दृढ़ता दो धारी तलवार हो सकती है, कभी वो आपको आगे ले जाती है, कभी वो आपको नई चीजों को अपनाने से रोक भी सकती है।
उनके जीवन में कई मोड़ आए होंगे, लेकिन आइज़ैक्सन तीन खास मोड़ों की बात करते हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। पहला तो जाहिर है 1905।
हाँ, वो चमत्कार एक साल। सोचिए, एक 26 साल का क्लर्क जिसे ठीक से नौकरी नहीं मिल रही, वो एक साल में फिजिक्स की बुनियाद हिला देता है। प्रकाश, एटम, टाइम स्पेस, मास एनर्जी, सब पर नई रोशनी डाली।
ये मोड़ क्यों था?
क्योंकि इसने आइंस्टीन को गुमनामी से निकालकर सीधे दुनिया के नक्शे पर ला दिया और 20वीं सदी के विज्ञान की दिशा तय कर दी। ये उनकी दिमागी ताकत का विस्फोट था।
दूसरा मोड़ जनरल रिलेटिविटी और फिर 1919 में उसका साबित होना।
हाँ, वो 10 साल की मेहनत, गणित से लड़ाई, कई गलत मोड़ और फिर 1915 में वो सिद्धांत देना जिसने ग्रेविटी की हमारी समझ बदल दी। और फिर 1919 का सूर्य ग्रहण, जब दुनिया ने देखा कि हाँ, ये आदमी सही कह रहा है।
और इसका असर क्या हुआ?
असर ये हुआ कि न्यूटन का सिद्धांत पीछे छोटा और आइंस्टाइन दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गए। सिर्फ वैज्ञानिक नहीं, एक ग्लोबल सेलिब्रिटी, एक विचारक।
और तीसरा मोड़, वो नाजी जर्मनी से पलायन और फिर रूजवेल्ट को वो चिट्ठी।
हाँ, वो बहुत मार्मिक और नाटकीय मोड़ था। जर्मनी में जान का खतरा, तो अपना देश, अपनी भाषा छोड़नी पड़ी। अमेरिका में शरणार्थी बने
और फिर शांतिवादी होते हुए भी एटम बॉम्ब की सलाह दी।
हाँ, ये विरोधाभास था। उन्हें डर था कि नाजी जर्मनी पहले बम बना लेगा, तो 1939 में उन्होंने रूजवेल्ट को वो चिट्ठी लिखी। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। इसने उन्हें एक शरणार्थी से अमेरिकी बौद्धिक प्रतीक बनाया। लेकिन ये चिट्ठी उनके अपने आदर्शों के साथ एक मुश्किल समझौता थी, जिसका बोझ वो हमेशा महसूस करते रहे। इसने विज्ञान, नैतिकता और राजनीति के जटिल रिश्ते को उजागर किया।
तो आइंस्टीन की कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये हमें, मतलब आम इंसानों को भी बहुत कुछ सिखाती है। क्या सबक ले सकते हैं हम?
कई सबक हैं। पहला, वो विद्रोही जिज्ञासा, उसे जगाइए। चीजों को मान मत लीजिए, सवाल पूछिए, चाहे काम हो, समाज हो या अपनी सोच। ये मत कहिए कि ऐसे ही होता है।
दूसरा, वो विचार प्रयोग, कल्पना की ताकत।
हाँ, किसी समस्या में सीधे कूदने से पहले मन में उसकी तस्वीर बनाइए, अलग अलग रास्ते सोचिए, आइंस्टीन की तरह विजुअलाइज कीजिए।
तीसरा, सरलता, सिंप्लिसिटी।
आज की जटिल दुनिया में ये बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन में, डिजाइन में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। चीजों को उलझाने के बजाय मूल तक जाइए, सरल सुंदर हल खोजिए। आइंस्टीन कहते थे, अगर आप कुछ आसानी से नहीं समझा सकते तो आप खुद उसे ठीक से नहीं समझे।
और कला और विज्ञान का मेल, वायोलिन बजाना।
हाँ, रचनात्मक शौक दिमाग को खोलते हैं, वो आपको अलग तरह से सोचना सिखाते हैं, दुनिया को देखने के नए नजरिए देते हैं।
और वो भरोसेमंद साथी वाली बात भी जरूरी है, साउंडिंग बोर्ड।
बिल्कुल, ऐसे लोग जिनसे आप अपने आधे अधूरे आइडियाज पर भी बात कर सकें, जो आपको फीडबैक दें, चुनौती दें। आइंस्टीन के लिए मिशेल बेसो जैसे दोस्त थे।
और हार ना मानना, 10 साल लगे जनरल रिलेटिविटी में।
हाँ, वो दृढ़ता, लचीलापन, बड़ी चीजें वक्त लेती हैं, ध्यान बनाए रखना पड़ता है, गलतियों से सीखना पड़ता है।
और ये कि हम जो हैं वो हमारे काम में झलकता है, चरित्र और उपलब्धि जुड़े हैं।
सही बात है, हमारे मूल्य, हमारे जुनून, हमारी कमियां, सब हमारे काम को आकार देते हैं। खुद को जानना जरूरी है।
तो आखिर में अगर 3 मुख्य बातें निकालनी हो आइंस्टाइन के जीवन और इस किताब से, तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक सीख कह सकते हैं, इमोशनल इनसाइट, कि महान से महान प्रतिभा भी इंसानी कमजोरियों और उलझनों से भरी होती है। आइंस्टीन की जिंदगी दिखाती है कि आप पूरी दुनिया के लिए सोच सकते हैं और फिर भी अपने निजी रिश्तों में उलझ सकते हैं। ये उनकी महानता को ज्यादा मानवीय बनाता है।
दूसरी, एक बौद्धिक सीख, एन इंटेलेक्चुअल इनसाइट, कि विज्ञान में या किसी भी फील्ड में सबसे बड़े ब्रेक थ्रू अक्सर कल्पना की छलांग से आते हैं, विजुअल थिंकिंग से आते हैं, सिर्फ डेटा या गणित से नहीं। सवाल पूछने की हिम्मत जवाब जानने से ज्यादा जरूरी हो सकती है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक सीख, अ यूनिवर्सल इनसाइट, कि जिंदगी भर एक बच्चे की तरह सीखते रहना, जिज्ञासा बनाए रखना और बुनियादी चीजों पर भी सवाल उठाने का साहस रखना, यही किसी भी क्षेत्र में नई खोजों की कुंजी है। और हाँ, ज्ञान के साथ जिम्मेदारी आती है, अपनी समझ का इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए करना चाहिए।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए इकत्रा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।